Well, let's see. After that song, I'm too tired to preach.
उस गीत के बाद मैं बहुत थक गया हूँ प्रचार करने के लिए.
Let's go to the book of 1 John, chapter 5.
आइए हम पहला यूहन्ना उसके पांचवें अध्याय में जाएंगे.
Well, excuse me. Let's first go to 2 Corinthians. I'm sorry.
उससे पहले हम दूसरा कुरिन्थियों में जाएंगे.
Chapter 13.
और उसका 13वां अध्याय.
And verse 5, 2 Corinthians 13:5.
दूसरा ग्रंथियों उसका 13 अध्याय और 5 पद. अपने आप को परख कर देखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं. अपने आप को जांचो या क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, अन्यथा तुम जांच में खोटे निकले.
As ministers of the gospel,
सुसमाचार का प्रचारक होने के नाते,
people are going to come to us who do not know whether or not they are saved.
हमारे पास ऐसे लोग आएंगे जो ये नहीं जानते कि वो बच चुके हैं या नहीं बच चुके.
They are struggling with assurance.
वो एक निश्चयता के मध्य संघर्ष कर रहे हैं.
Many sincere Christians struggle with assurance.
कितने जो मसीह हैं, जो गंभीरता से मसीह जीवन में हैं, परंतु फिर भी संघर्ष करते हैं वो निश्चयता में.
Also, we will have church members,
यहां तक कि हमारे पास कलीसिया में भी ऐसे सदस्य होंगे,
who even though they profess faith in Christ, they do not live like Christians.
वो यद्यपि उन्होंने अपने जीवन को मसीह का उन्होंने अंगीकार किया है, लेकिन फिर भी वो ऐसा जीवन नहीं व्यतीत करते जैसे मसीह हैं.
How can we help them?
हम उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं?
We want the true Christians to have the full assurance of their salvation.
हम चाहते हैं कि सच्चे मसीह मसीहों के अंदर उद्धार का सच्चा पूरा निश्चय पाया जाए.
And we want false professors, false confessors of Christ to realize that they're not saved.
और हम ये भी चाहते हैं कि जो झूठे इस बात का अंगीकार करने वाले हैं कि उन्होंने उद्धार पाया, वे भी इस बात का अनुभव कर सके कि मसीह नहीं है.
What should we do?
हमें क्या करना चाहिए?
Now, sometimes a person comes to a pastor.
कभी एक व्यक्ति पासवान के पास आता है.
And says, Pastor, I don't know if I'm truly a Christian.
वो कहता है, पासवान मुझे नहीं मालूम कि मैं वास्तविक से मसीही हूँ.
And this is what pastors will often do.
और ये पासवान प्राय ऐसा करेंगे.
They'll ask them, Was there ever a time when you asked Jesus to come into your heart?
आप उनसे कहेंगे, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित किया?
If the person says yes,
और यदि व्यक्ति कहता हाँ,
the pastor will ask, Were you sincere?
तो पासवान ये पूछेगा, क्या तुम उस समय गंभीर थे?
If the person says, I think so,
अगर वो व्यक्ति कहता हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ,
the pastor will say, well then you're saved.
तो पासवान कहेगा कि तो तुम बच चुके हो.
You need to quit doubting your salvation.
और आपको अपने उद्धार पर कोई संदेह नहीं करना है.
Brothers, that is not good counsel.
ये एक अच्छी सलाह या सम्मति नहीं है.
We cannot determine whether or not we are saved just by looking at our sincerity.
हम किसी के बारे में ये प्रकार इस प्रकार का निश्चय नहीं कर सकते केवल देखकर कि वो बचा है या नहीं बचा.
We need greater proof than that.
हमें उससे ज्यादा प्रमाण चाहिए.
We need biblical proof.
हमें बाइबल के पर आधारित प्रमाण चाहिए.
That we are saved.
कि हम बचे हुए हैं.
How do we know that we are truly Christian?
हम किस प्रकार जान सकते हैं कि हम सच्चे सच में मसीह हैं?
Well, we read 2 Corinthians 13:5.
हमने दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 का 5 पद पढ़ा है.
And I was going to start there, but I need to go a little bit deeper.
मैं इसको आरंभ करना चाहता था, लेकिन मैं और अधिक इस पर विस्तार से जाऊंगा.
Let me show you three basic ways in which we discern that we truly are believers.
मैं आपको बताना तीन वो मूल सिद्धांत बताना चाहूंगा जिसके द्वारा हम इस बात की परख कर सकते हैं.
For the first one, let's go to John chapter 3.
पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय.
John chapter 3, verse 16.
यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका 16 पद.
Let's read that text.
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए.
One of the first ways in which we can determine whether or not we're saved.
पहला ये तरीका है जिससे हम ये जान सकते हैं, ये निश्चय प्राप्त करते हैं क्या हम बचे या नहीं बचे.
Is simply to look at the scriptures rationally.
कि केवल सुसमाचार पर ध्यान देने के द्वारा.
And ask ourselves a rational question.
और तब परमेश्वर के साथ प्रश्न करने के द्वारा.
There is a promise here.
यहाँ पर एक प्रतिज्ञा है.
Whoever believes in the Son has eternal life.
जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है.
The first thing we ask ourselves is, do we believe that?
पहला प्रश्न है क्या हमने उस पर विश्वास किया है.
Do we believe that the Son of God died for our sins?
क्या हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र हमारे गुनाहों के लिए मारा गया.
That he rose again from the dead.
वो मृतों में से जी उठा.
And that salvation is found only in him.
और उद्धार जो है केवल उसी में पाया जाता है.
Do we understand this text intellectually?
क्या हम इस भाग को इस स्थल को समझते हैं.
Do we understand it rationally?
क्या हम इसको पूरी रीति से समझ के साथ समझते हैं.
So a person looks at this.
और व्यक्ति इस बात को देखता है.
And he sees the promise.
और उस प्रतिज्ञा को देखता है.
God promises eternal life to those who believe in His Son.
परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनंत जीवन के लिए जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं.
And they say to themselves, I believe that.
और तब वो अपने आप में कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ.
I believe that.
मैं इस पर विश्वास करता हूँ.
Or another way we can say it is this.
और दूसरी तरह से इस तरह से वो कह सकते हैं.
I believe in the doctrines of the Christian faith.
कि मैं उस मसीह के जो मसीह के विश्वास का सिद्धांत है उस पर मैं विश्वास करता हूँ.
I believe they are true.
मैं विश्वास करता हूँ कि वो सच्चे हैं.
Now this sounds very simple.
ये सरल लग रहा हो.
But it would eliminate a lot of people.
लेकिन ये बहुत सारे लोगों को उत्तेजित कर सकता है.
Even among those who call themselves Christians.
यहाँ तक उन लोगों को भी जो अपने आप को मसीह कहते हैं.
The one who believes in Jesus has eternal life.
जो कोई ये कहता है कि इस मसीह में अनंत जीवन है.
There are many people who call themselves Christians.
बहुत सारे लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं.
And they say they believe.
और वो ये कहते हैं कि वो विश्वास करते हैं.
But the Jesus they believe in is different from the Jesus of the Bible.
लेकिन जिस यीशु पर विश्वास करते हैं वो यीशु बाइबल के यीशु से भिन्न है.
Maybe they just believe he's a prophet.
हो सकता है वो केवल ये विश्वास करते कि भविष्यता है.
Maybe they believe that he is not really God.
हो सकता है ये विश्वास करते उस वास्तविक से परमेश्वर नहीं है.
Or maybe they believed he died just to give an example.
हो सकता है वो ये विश्वास करे कि वो केवल एक उदाहरण देने के लिए मारा गया.
Or maybe they believe that salvation is through faith.
या वो इस विश्वास करें कि उद्धार जो है विश्वास के द्वारा है.
Plus their works.
लेकिन उसके साथ साथ उनके भले कार्यों के द्वारा भी.
So a good question to ask yourself is this.
और इसलिए एक अच्छा प्रश्न जो सब से पूछने के लिए वो ये.
Do you believe what the Bible teaches about Jesus?
क्या आप विश्वास करते हैं जो बाइबल यीशु के बारे में सिखाती है.
Do you believe the full story of what the Bible is teaching?
जो बाइबल सिखा रही है उसकी पूर्ण कहानी पर आप विश्वास करते हैं.
And are you trusting that he gave you eternal life?
और क्या आप विश्वास करते हैं कि उसने आपको अनंत जीवन प्रदान किया है.
So we can look at this matter rationally.
और इस तरह से हम इस विषय को समझदारी से देख सकेंगे.
But there's something else more than just the ration.
लेकिन इस समझदारी से बढ़कर कुछ और भी है.
I want us to go to Romans chapter 5.
मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रोमियो उसके पांच अध्याय को निकालें.
There's something more than just the rational.
उससे अधिक कुछ और बढ़कर.
Let's look at Romans chapter 5, verse 5.
पांच अध्याय का पांच पद. आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है.
Now the Christian faith is not based upon emotion.
जो मसीह विश्वास है वो भावना पर आधारित नहीं है.
It is not based upon feeling.
वो उन भावनाओं के पर नहीं है.
It is not based upon affections.
वो जो लगाव है उस पर आधारित नहीं है.
But affections and feeling and experience are all a part of the Christian life.
ये चाहे वो अनुभव हो चाहे वो भावना हो चाहे वो लगाव हो वो मसीह जीवन का एक भाग हो सकता है.
It says that the love of God has been shed in, abroad and poured out in our hearts through the Holy Spirit.
वो कहता है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उस पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है.
A good question to ask yourself is this.
एक अच्छा प्रश्न स्वयं से पूछने के लिए वो यह है.
Is that a reality in your life?
क्या ये आपके जीवन की वास्तविकता है?
Has the love of God been shed abroad in your heart?
क्या परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में डाला गया है?
Do you have a sense of God's love for you?
क्या आपके पास ये सोच है कि परमेश्वर का प्रेम के प्रति सोच है?
Has God made His love known to you?
क्या परमेश्वर ने आपके प्रेम को आपके ऊपर प्रकट किया है?
And has it led to you loving God?
क्या आपको परमेश्वर ने इस प्रकार से अगुवाई की है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें?
Let me say something that's kind of dangerous, but it needs to be said.
ये एक थोड़ा खतरनाक तो होता है, लेकिन अच्छा है इसको समझने के लिए.
Have you had an encounter with God?
क्या आपने कभी परमेश्वर के साथ सामना किया है?
Have you experienced His love?
क्या आपने उसके प्रेम का सामना अनुभव किया है?
Have you experienced the sense of His pardon?
क्या आपने उसकी क्षमा, जो पापों की क्षमा है, उसका अनुभव किया है?
There are people who do not like this kind of teaching.
कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की शिक्षा को पसंद नहीं करते.
They try to turn Christianity into something that's purely intellectual.
वो कुछ लोग हैं जो मसीहत को पूरी रीति से एक ज्ञान के रूप में डाल देते हैं.
That has nothing to do with experience.
अनुभव के साथ से कोई मतलब नहीं है.
Nothing to do with affection.
वो लगाव से मतलब नहीं है.
But that's not biblical.
ये बाइबल के आधार पर नहीं है.
When God renews your heart,
जब परमेश्वर आपके हृदय को नया बनाता है,
when you are born again,
जब आप नया जन्म पाते हैं,
you are going to experience something.
आप कुछ नया अनुभव करने जाते हैं.
Some men have more dramatic experiences than others.
कुछ लोगों के अंदर एक ऐसा क्रांति अनुभव होता है जो दूसरों के साथ नहीं है.
I have seen men just lay on the floor and cry.
कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो फर्श पर गिर जाते हैं और रोने लगते हैं.
I've seen others just laugh with joy.
कि मैंने कुछ को देखा है जो आनंद के साथ हंसने लगते हैं.
I've seen others just sat very quietly and felt the peace of God.
मैंने कुछ लोगों को देखा है जो शांति से बैठकर उनके हृदय में एक गहराई की शांति का एहसास होता है.
But they possessed the reality that God had done something to them.
लेकिन उनके अंदर ये वास्ता वास करने लगती है कि परमेश्वर उनके जीवन में कुछ किया है.
And that in some sense the Holy Spirit confirmed to them that they were now a child of God.
और किसी भी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा उनको ये निश्चय दिला देता है कि अब वे परमेश्वर की संतान हैं.
Is that a reality in your life?
क्या ये आपके जीवन की वास्तविकता है?
Do you remember when God saved you?
क्या आपको याद है कि परमेश्वर ने जब आपको बचाया?
Did you experience His love?
क्या आपने उसके प्रेम का एहसास किया?
Did you experience His peace?
क्या उसके शांति का आपने अनुभव किया?
Was there a sense of being pardoned?
क्या आपके अंदर यह एहसास था कि उसने आपको क्षमा किया?
Now all of this is not absolute proof.
ये सारी चीज वो पर्याप्त सबूत के रूप में नहीं है.
But it is part of the proof.
लेकिन ये उन सबूतों का एक भाग है.
Remember what I said first.
मैंने पहले क्या कहा?
One of the proofs of salvation.
पहला उद्धार का जो पहला प्रमाण है.
Is we just rationally look at the promises of God.
हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बहुत ही गहराई के साथ देखते हैं.
And we say to ourselves, I believe that.
और तब हम कहते हैं अपने आप में, मैं इस पर विश्वास करता हूं.
But the other is a sense that God has done something to you.
लेकिन दूसरा इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर ने जरूर हमारे लिए कुछ किया है.
That He has done a work in you.
कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ काम किया है.
That He has changed you.
कि उसने बदला है.
That He has revealed His love to you.
कि उसने अपने प्रेम को आपके ऊपर प्रकट किया है.
Well, now let's go back to 1 Corinthians.
आइए हम पहले क्रंथियों में वापस जाएंगे.
I'm sorry, 2 Corinthians.
दूसरा क्रंथियों.
Chapter 13.
उसका 13वां अध्याय.
Verse 5.
और उसका 5वां पद.
And let's read that again.
और फिर से हम इसको पढ़ना चाहेंगे. दूसरा क्रंथियों 13 अध्याय 5 पद. अपने आप को परख कर देखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं. अपने आप को जांचो. या क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, अन्यथा तुम जांच में खोटे निकले.
Here is a third way in which we can find some assurance.
यहाँ पर एक तीसरा तरीका है जिसके द्वारा हम एक निश्चयता को प्राप्त कर सकते हैं.
We should test our lives.
हमें अपने जीवन को परखना है.
We should examine ourselves.
हमें अपने आप को जांचना है.
What does the Bible say a Christian looks like?
परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक मसीह को किस प्रकार दिखाई देना चाहिए?
What does the Bible say are the characteristics of a Christian?
एक मसीह जीवन की क्या वो चरित्र या का गुण है?
And we should compare our life to that.
हमें अपने जीवन को उससे तुलनित करना चाहिए.
And the more that we see our life is the life of a Christian, the greater our assurance.
जितना अधिक हम अपने जीवन को देखते हैं कि हमारा जीवन मसीह है उतना अधिक हम उस निश्चयता में बढ़ते जाते हैं.
The more that we see that our life contradicts the qualities of a Christian,
जितना अधिक हम अपने जीवन को देखते हैं हमारे जीवन में वो मसीह गुणों में विरोधाभास पाता है.
We should be concerned as to whether or not we're truly Christian.
और इस उस समय हमें अपने बारे में चिंतित होना है क्या हम वास्तविक रीति से मसीह हैं या नहीं.
You say, but what are some of those qualities?
आप कहेंगे वो कौन सी विशेषताएं गुण हैं?
What is the standard by which we can examine or compare ourselves?
वो कौन सा स्तर है जिस स्तर के द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं?
Well, let's go to 1 John chapter 5.
आइए हम पहला योहन्ना के पांचवें अध्याय में जाएंगे.
Verse 13.
उसका 13 पद. पहला योहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 13 पद. मैंने तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो ये बातें इसलिए लिखी हैं कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है.
John provides us with a great blessing.
योहन्ना एक महान आशयों के साथ हमें उपलब्ध कराता है.
At the end of his gospel, he tells us why he wrote his gospel.
सुसमाचार के अंत में वो ये बताता है कि उसने सुसमाचार क्यों लिखा.
He wrote his gospel that we might believe.
ये इसलिए सुसमाचार लिखा ताकि हम उस पर विश्वास करें.
And have eternal life.
और अनंत जीवन को प्राप्त करें.
Here he's telling us why he wrote his first epistle.
और यहाँ पर वो इस बात को बताना चाहता है उसने पहली पत्री क्यों लिखी.
Why did John write 1 John?
क्यों उसने पहले योहन्ना को लिखा.
He says, these things I have written to you.
ये चीज मैंने तुम्हें इसलिए लिखी है.
What are these things?
वो कौन सी चीजें हैं.
The book of 1 John.
वो पहले जो योहन्ना की जो बातें हैं.
He's written to you who believe in the name of the Son of God.
कि जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास किया है.
He is writing to Christians.
वो मसीहों को लिख रहा है.
Or at least those who have professed faith in Christ.
उन लोगों जिन्होंने अपने विश्वास की उद्घोषणा की है.
Now, why has he written to them?
क्यों उनको लिख रहा है.
So that they may know they have eternal life.
ताकि वे जान सके कि अनंत जीवन उनका है.
So what is the purpose of 1 John?
पहले योहन्ना का लिखने का उद्देश्य क्या है.
That by reading this book,
इस पुस्तक को पढ़ने के द्वारा,
and comparing your life to it,
अपने स्वयं के जीवन को तुलनित करने के द्वारा,
the believer might have the full assurance that he's truly a Christian.
कि एक विश्वासी इस पूर्ण निश्चयता को प्राप्त कर ले कि हाँ वो सच मसीह है.
Now the book of 1 John is made up of a series of tests.
और पहला योहन्ना की जो पत्री है वो एक परखों का क्रम लिखा गया है.
Now obviously we can't go through the entire book this afternoon.
ये सच है कि इस समय में हम पूरी पुस्तक के ऊपर नहीं जाते.
But we will look at some of the most important tests.
लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भागों को इस स्थलों को हम देखना चाहेंगे.
These are the qualities or characteristics of a true Christian.
और ये एक सच्चे मसीहों का वो चरित्र है जिसमें पाया जाता है.
And we need to compare our life to them.
और हमें अपने जीवन को इससे जांचना है.
Let's read chapter 1, verse 5.
पहला अध्याय उसका पांचवा पद. वो समाचार जो हमने उससे सुना है और तुमको सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं.
Now what does it mean that God is light?
इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ज्योति है.
Well, I believe that it means that God is holy.
इसका मतलब यह है परमेश्वर पवित्र है.
There is no sin or shadow in him.
उसके अंदर कोई भी छाया नहीं कोई भी पाप नहीं.
But also it means something else.
लेकिन इसके साथ कुछ और भी है.
It's referring to revelation.
वो प्रकाश द्वार की ओर संकेत कर रहा है.
God is not a hidden God.
परमेश्वर एक छिपा हुआ परमेश्वर नहीं है.
He has made himself known to us.
उसने अपने स्वयं को हमारे ऊपर प्रकट किया है.
He has told us who he is.
उसने इस बात को दिखाया है, बताया है कि वो कौन है.
And he has told us what his will is.
और उसने इस बात को बताया कि उसकी इच्छा क्या है.
Now let's go on to verse 6.
हम छठे पद में जाएं.
If we say we have fellowship with him,
यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है.
Now this means if we say that we are Christians,
यदि हम कहें कि हम मसीही हैं.
If we say that we are children of God,
यदि हम कहें कि हम परमेश्वर के संतान हैं.
And yet we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
और फिर भी हम अंधकार में चलते हैं, सब झूठे हैं.
So if we say we are Christians,
हम कहते हैं मसीह हैं.
And we walk in the darkness,
लेकिन हम अंधकार में चल रहे हैं.
We lie when we say we are Christians.
और हम झूठ बोल रहे हैं कि मसीह हैं.
Now verse 7.
सातवां पद.
If we walk in the light as he himself is in the light,
परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसा वो ज्योति में है.
We have fellowship with one another and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin.
तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है.
If we walk in the light,
यदि हम ज्योति में चलें,
it is evidence that we are Christian.
ये इस बात का सबूत या प्रमाण है कि मसीह में हैं, मसीह हैं.
What does it mean to walk in the light?
ज्योति में चलने का अर्थ क्या है?
It means to live in such a way,
इसका मतलब यह है कि हम इस प्रकार से जीते हैं,
that conforms to what God has told us about himself,
कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमसे अपने बारे में कहा है.
And it conforms to God's will that He's revealed to us.
और वो सारी परमेश्वर की इच्छाओं को जो उसने हमारे प्रति प्रकट किया है.
We walk in the light.
हम ज्योति में चलते हैं.
We walk in the revelation of God.
हम परमेश्वर के प्रकाशन में चलते हैं.
We walk according to what God has told us about Himself.
जहाँ हम उसके अनुसार चलते हैं जो परमेश्वर ने स्वयं के बारे में बताया है.
And what God has told us about His will.
और जो कुछ परमेश्वर ने अपनी इच्छा के बारे में बताया है.
Now what does it mean to walk?
और चलने का मतलब क्या है?
It's from a Greek word which literally means to walk around.
और जो ये यूनानी भाषा से लिया गया है, इसका मतलब ये वास्तविक यही है कि आसपास इधर उधर चल घूमना, टहलना, चलना.
And it refers to our lifestyle.
वो हमारे जीवन के जो तरीके हैं उसके अनुसार.
Also, it is a present tense verb.
और ये वर्तमान कार्य की क्रिया है.
And it indicates a continuous action.
और ये वर्तमान काल की क्रिया निरंतर जारी रहती है.
What is one of the evidences that we are Christian?
एक कौन सा ये प्रमाण है कि हम मसीह हैं?
Our style of living,
हमारे जीने का तरीका,
conforms to what God has told us about Himself,
उस चीज को दर्शाता है या पक्का करता है जो कुछ परमेश्वर हमसे कहा है.
And it conforms to what God has revealed about His will.
जो कुछ परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हमें दिखाया उसको भी पूरा करता है.
Do you see that?
आप देख रहे हैं?
A Christian is going to live in a way that agrees with what God has told us about Himself.
और एक मसीह वो है वो उस अनुसार जीने को तैयार रहता है, उससे सहमत रहता है जो परमेश्वर ने हमें कहा है.
He's going to live in a way that agrees with the will of God that's been revealed.
वो उस परमेश्वर की इच्छा जो हमारे पर प्रकट की गई है उसके अनुसार जीने के लिए सहमत रहता है.
Now does this mean that the Christian is going to be perfect?
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या इसका ये मतलब है कि मसीह लोग पूरी रीति सिद्ध हो गए?
No,
नहीं.
He's not talking about perfection.
वो सिद्धता के बारे में बात नहीं कर रहा.
He's talking about a style of life.
वो उनके जीवन की क्रिया तरीके के बारे में बात कर रहा है.
Over a period of time.
कुछ समय के अनुसार.
Let me give you an example.
एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ.
If you have a camera that just takes snapshots,
और यदि आपके पास एक कैमरा है जो केवल आपकी तस्वीरों को लेता है,
and you follow me around,
और आप मेरे पीछे चलें,
and you wait until you see me sin,
और आप मुझे उस समय से देखें जब तक मैं पाप कर रहा हूँ,
maybe I'm angry,
मैं उस समय आपसे क्रोधित हो जाऊं,
and you take a picture,
और आप मैं क्रोधित हूं और आपने तस्वीर खींच ली.
And then you come back here and you show the picture to everybody.
और तब आप क्रोधित हुए, आपने उनको सबको तस्वीर दिखा दी.
And you say, Paul Washer's not a Christian.
कि पौलुस जो है वो मसीह नहीं है.
Look,
देखिए,
he's not walking in the light.
वो ज्योति में नहीं चल रहा है.
Now,
अब.
That's not fair.
ये सही नहीं है.
That's not what John's talking about.
इस तरह से भैया उन्होंने नहीं बताया.
That's not an accurate description of my life.
ये मेरे जीवन का एक स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है.
You've taken a picture of me at one moment in time.
एक क्षण की आपने तस्वीर ली है.
That doesn't tell you who I am.
वो ये आपको नहीं बताएगा कि मैं वास्तविक क्या हूँ.
But now if you take a movie camera.
लेकिन आप वो कैमरा ले जो मूवी कैमरा है.
And you follow me around 24 hours a day.
और आप 24 घंटे मेरे पीछे चले एक दिन के.
And you do that for a year.
और एक साल तक आप ऐसे करें.
On that film you will have some evidence.
और उस तस्वीर में आपको कुछ ऐसे प्रमाण या सबूत मिल जाएंगे.
Because you will have my style of life over a period of time.
क्योंकि आपके सामने मेरे जो पूरे समय का जो तरीका है वो आपको मिल जाएगा.
As believers we still struggle with sin.
विश्वासी होने के नाते हम प्रतिदिन पाप के प्रति संघर्ष करते हैं.
There will be moments in our lives where we don't look like light.
और ऐसे क्षण हमारे जीवन में आते हैं जब हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता.
We're not walking in the light.
हम उस प्रकाश में नहीं चल रहे हैं.
But if you look at our entire life as believers,
लेकिन आप हमारे पूरे विश्वासी जीवन को देखें,
you will see that our style of living is a life in the light.
आप ये देखेंगे हमारा जीने का जो तरीका है वो एक सच में ज्योति में चलने का है.
Christians sin.
मसीह पाप करते हैं.
A Christian can even fall into terrible sin.
वो मसीह जो है भयंकर पाप में भी गिर सकते हैं.
But a Christian cannot live his entire life in sin.
लेकिन एक मसीह निरंतर उस पाप में गिर कर नहीं रह सकता है.
Do you see what we're talking about?
अब देख रहे हैं हम किस क्या बात कर रहे हैं.
A style of life.
वो जीवन की जो चाल है.
Now let's go to our next test.
आगे दूसरी परख में जाइए.
Verses 8. Let's read verse 8.
आठवां पद.
If we say we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us.
यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं.
If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins.
और यदि हम अपने पापों को मान लें तो उसके तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है.
And to cleanse us from all unrighteousness.
और वो हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है.
If we say that we have not sinned,
यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया,
we make him a liar.
हम उसको झूठा ठहराते हैं.
And his word is not in us.
और उसका वचन हमें नहीं है.
The first characteristic we saw is this.
पहला जो हमने गुण देखा वो ये है.
The true Christian,
एक सच्चा मसीह,
walks in the light as a style of life.
वो एक जीवन के तरीके में जीवन व्यतीत करता है.
The next statement we can make about a Christian is this.
दूसरा हम कथन इस मसीह के बारे में इस तरह से बनाते हैं.
The true Christian,
एक सच्चा मसीह,
is sensitive to the sin that is in his life.
कि वो उस पाप के प्रति जो उसके जीवन में है उसके प्रति सचेत है.
And his life is marked by repentance and confession.
और उसका जीवन मन फिराने और पश्चाताप के द्वारा दिखाई देता है.
An unbeliever is not really concerned about sin.
और जो अविश्वासी है वो पाप के प्रति तो चिंतित नहीं होते.
It doesn't break his heart when he sins.
जब वो पाप करता उसका हृदय नहीं टूटता.
He doesn't confess his sin.
वो अपने पाप को नहीं मानता.
He doesn't seek for pardon.
वो क्षमा नहीं मांगता, खोज नहीं करता.
But this is one of the great characteristics of a Christian.
लेकिन एक मसीह की सबसे बड़ा गुण यह है.
He recognizes sin in his life.
वो अपने जीवन में पाप को महसूस करता है, पाप को पहचानता है.
And his life is a life of confession.
और उसका जीवन पश्चाताप करने वाला जीवन है.
Do you see that?
आप देखते हैं इस बात को.
This is very, very important.
ये बहुत महत्वपूर्ण है.
Now let me share with you something that'll help you see something important, I think.
मैं आपके साथ कुछ बांटूंगा जो आपकी मदद कर सकेगा कि इस महत्वपूर्ण बात को आप देख सकें.
Usually when I share this, pastors usually laugh, but it's true.
जब मैं इस बात को कहता हूँ तो अधिकतर पास्टर जो है वो हंसते हैं, लेकिन सच है.
If you preach enough years, you're going to see this happen.
Sorry?
If you preach long enough, you're going to see this happen.
अगर आप इस प्रकार से इसको प्रचार करें तो आप इसका परिणाम देखेंगे.
Let's say I'm preaching in the church on Wednesday night.
मैं बुधवार के रात में प्रचार कर रहा हूँ अपने कलीसिया में.
And it seems that God's presence is there in an unusual way.
और अद्भुत रूप से परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है.
And as I'm preaching about holiness,
और जबकि मैं पवित्रता के बारे में प्रचार कर रहा हूं,
some of the people in the church begin to become very disturbed.
और कुछ लोग जो हैं कलीसिया में किसी रीति से विचलित हो रहे हैं.
They're seeing their sin.
वो अपने पापों को देख रहे हैं.
Some even begin to weep.
होता है कुछ कोई जो रोने लगे.
At the end of the service, some of them come up and just start praying.
और कुछ संदेश के बाद कुछ लोग आके होता है कि प्रार्थना करने लगे.
You know what's amazing?
मालूम क्या हुआ?
When that happens,
अगर ऐसा हो,
it's usually the most devout people in the church who are broken over their sin.
और most devout.
Usually it's the most
sorry?
The most holy people
yes.
in the church
yes.
that are
जो बहुत अधिक समर्पित है या पवित्र है वही उनके हृदय में इस तरह की भावना उत्पन्न होती है.
The most dedicated Christians in the church are the ones that are weeping.
वो वही लोग हैं जो बहुत अधिक समर्पित होते हैं वही रोते हैं पाप के प्रति.
And the most carnal people in the church are sitting back there as though they had no sin at all.
और जो संसारिक हैं वो इस तरह से बैठेंगे जैसे उनके अंदर कोई पाप नहीं है.
That almost always happens.
वो हमेशा इसी तरह से होता है.
The most devout Christians are the ones who are broken.
वो जो समर्पित लोग हैं मसीह हैं वही
what's going on?
उठते हैं. क्या हो रहा है?
We're seeing the difference between the sheep and the goats.
हम यहाँ पर उस बकरी और भेड़ और बकरे में फर्क देख रहे हैं. बकरी और भेड़ में फर्क देख रहे हैं.
The true Christians are sensitive about their sin.
जो सच्चे मसीह हैं वो अपने पाप के प्रति सचेत या जागृत हैं.
The lost church members see no sin.
और जो खोए हुए लोग हैं वो कलीसिया के सदस्य हैं वो अपने पाप को देखते हैं.
You go to a godly man.
आप एक धर्मी व्यक्ति के पास जाइए व्यक्ति के पास जाइए.
And you sit down with him.
उसके साथ बैठ जाइए.
And you humbly share with him that you think there's a sin in his life.
वो आप जो उसके हृदय में जीवन में पाप है आप उस पाप के बारे में उससे बांटिए.
He'll usually receive it and listen to you.
वो सुनेगा आपके सुनेगा और ग्रहण करेगा.
He'll want to know where he's wrong.
और वो इस बात को जानना चाहेगा कि वहां कहां वो गलत है.
You go to a carnal church member and tell them that they have sin in their life.
लेकिन ऐसे कलीसिया के सदस्य के पास जाइए जो शारीरिक है आप उसको अगर बताएंगे.
And they will get angry with you.
वो आपसे क्रोधित हो जाएंगे.
And tell you, do not judge me.
वो कहेंगे आप मेरे को मत जांचिए.
In the Sermon on the Mount, in the Beatitudes,
और जो पहाड़ी उपदेश है
Jesus gives us some of the characteristics of a true disciple.
एक सच्चे शिष्य के बारे में परमेश्वर कुछ प्रभु यीशु मसीह कुछ दान देते हैं.
And one of those characteristics is blessed are those who mourn.
वो जो गुण है उनमें से गुण एक ये है धन्य है वे जो मन के दीन हैं.
As I said yesterday,
जैसे मैंने कल कहा,
the true Christian feels joy.
कुछ लोग हैं जो सच्चे मसीह हैं वो आनंद मनाते हैं.
He experiences the pardon of Christ.
उन्होंने मसीह की क्षमा का अनुभव किया है.
But at the same time he mourns over his sin.
लेकिन उसी समय में भी वो पाप के कारण शोकित होते हैं.
The lost person can just live in sin.
वो व्यक्ति है जो पाप में मुश्किल से रहना चाहता है.
And they're not sorry for their sin unless they get caught.
और वो व्यक्ति कुछ ऐसे हैं जो जब तक पाप में रहना चाहेंगे जब तक उनको पकड़ा ना जाए.
सो द फर्स्ट टेस्ट ऑफ अ ट्रू क्रिश्चियन
पहले जो परख है एक सच्चे मसीह के लिए
इज दैट ही वॉक्स इन द लाइट एज अ स्टाइल ऑफ लाइफ.
वो ज्योति में चलता है जिस प्रकार से उसको ज्योति में चलना है चाल चलनी है.
द सेकेंड इज दैट ही इज सेंसिटिव टू हिज सिन.
दूसरा वो अपने पाप के प्रति सचेत है.
एंड हिज लाइफ इज अ लाइफ ऑफ कन्फेशन.
उसका जीवन एक पश्चाताप का जीवन है.
The third test is found in chapter 2, verse 3.
और तीसरा जो है वो दूसरे अध्याय के तीन पद में है.
By this we know that we have come to know him.
कि इसके द्वारा हम जानेंगे कि हम जान गए हैं.
If we keep his commandments.
यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं.
The one who says, I've come to know him.
जो ये कहता है मैं उसको जान गया हूं.
And does not keep his commandments.
परंतु उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता.
is a liar and the truth is not in him.
वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं.
Now brothers, that's very simple.
ये एक बहुत ही साधारण है.
The true Christian will keep the commandments of God.
एक सच्चे मसीह जो है परमेश्वर की आज्ञा को रखते हैं.
And the false convert will not.
और जो झूठे परिवर्तित है वो नहीं करेंगे.
You say, but what does that mean?
इसका मतलब क्या है?
Because we all sin.
क्योंकि हम पापी हैं.
We all disobey the commandments of God.
हमने सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की आज्ञा का हमने उल्लंघन किया है.
Again, brothers, we're talking about a style of life.
फिर से हम जीवन की चाल के बारे में बात कर रहे हैं.
In the unbeliever's life, the word of God is not important.
अविश्वासी के जीवन में परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण नहीं है.
He doesn't read the word of God.
वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता.
He doesn't seek to obey the word of God.
वो परमेश्वर के वचन को पूरा करने की खोज नहीं करता.
When he disobeys the word of God, he does not confess it.
वो जब परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करता है तब वो पश्चाताप नहीं करता.
But the Christian is different.
लेकिन एक मसीह अलग है, भिन्न है.
He has a new relationship with the word of God.
उसके पास वचन के लिए एक नई संबंध है, साझा है.
I like to say it this way.
मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगा.
If you have a new relationship with God,
यदि आपके पास एक नया संबंध है परमेश्वर का,
you will have a new relationship with sin.
कि आपके पास नए पाप के प्रति भी एक नया संबंध होना है.
You will no longer be friends with sin.
आप कभी भी पाप के मित्र नहीं होंगे.
But also, if you have a new relationship with God,
यदि आप परमेश्वर के साथ आप नए संबंध में हैं,
you will have a new relationship with the commandments of God.
तब आपके पास परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ नया संबंध होगा.
As John says in this letter,
और जैसा यूहन्ना इस पत्र में कहता है,
the commandments of God will not be a burden to you.
कि परमेश्वर की आज्ञाएं आपके लिए भार नहीं होंगी.
They will be your delight.
वो आपके लिए आनंद होंगी.
The burden will only come when you disobey them.
जब वो भार उस समय होंगे जब आप उनका उल्लंघन करें.
So the true believer in Jesus Christ,
जो यीशु मसीह में जो सच्चे विश्वासी हैं,
has a new relationship with God's commandments.
वो परमेश्वर के आज्ञाओं के साथ उनका एक नया संबंध है.
He delights in them.
वो उस पर आनंदित होता है.
He seeks to obey them.
वो उसको पूरा करने के लिए पालन करने की खोज करता है.
When he disobeys, his heart is broken.
जब उसको अनज्ञाकारी होता है उसका हृदय टूटता है.
He repents and confesses.
वो पश्चाताप करता है, मन बनाता है.
Now let's look at verse 6.
आइए हम छठे पद को देखें.
We have another test.
यहाँ पर एक और परख है.
The true believer will seek to walk as Jesus walked.
जो कहता है कि मैं उस पे बना रहता हूँ वो स्वयं वैसे ही चले जैसा वो चलता था.
It says the one who says he abides in him,
वो जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ,
ought himself to walk in the same manner as he walked.
और वो स्वयं भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था.
Maybe you're thinking right now, well, Brother Paul, no one walks like Jesus.
आप कहेंगे, Brother Paul, कोई भी यीशु के समान नहीं चला.
Well, again, we need to understand what he's talking about.
हमें पुनः इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए क्या कुछ वो कह रहा है.
He's talking about a style of life.
वो जीवन किस चाल के बारे में बात कर रहा है.
A believer admires Jesus Christ.
एक विश्वासी जो है वो यीशु मसीह को बहुत ध्यान से देखता है.
And he wants to be like him.
और वो चाहता है कि वो स्वयं यीशु के समान हो.
And his life is characterized by seeking to follow Jesus and imitate him.
और उसके हृदय में यह अभिलाषा रहती है कि वो यीशु का अनुसरण करे, उसके पीछे चले.
And even though his imitation is not perfect,
और यद भी उसके पीछे चलना उसका अनुसरण करना पूर्णतः सिद्ध नहीं है,
इट इज रियल,
लेकिन ये वास्तविक है.
इट्स ऑब्वियस दैट्स व्हाट ही डिजायर्स.
और ये वास्तविक है और इसलिए वो आशा रखता है.
व्हेन आई वाज अ लिटिल बॉय आई लिव्ड ऑन अ फार्म.
जब मैं छोटा बालक था मैं खेत में रहा.
And my father would wake me up in the morning to feed the animals.
और मेरे पिताजी मुझे सुबह उठाते थे ताकि मैं उन जानवरों जो हमारे घर में थे उनको मैं भोजन दूँ.
And there would be snow on the ground.
और फर्श में बर्फ पड़ी रहती थी.
And my father would grab a bucket with one hand and another bucket with the other.
और मेरे पिताजी एक हाथ में एक बाल्टी दूसरे हाथ में दूसरी बाल्टी.
And he would take off walking across the field.
और तब वो उस खेत में से होकर जाते थे.
My father was a very big man.
मेरे पिता लंबे चौड़े व्यक्ति थे.
And he took long strides when he walked.
और जब वो चलते थे तो बहुत लंबा कदम उठाते थे.
And I was a little boy about this tall.
और मैं छोटा सा व्यक्ति था उस समय.
And I would grab one bucket with each hand.
और मैं भी एक दोनों हाथों में एक बाल्टी लूंगा.
And I would follow my father.
और मैं अपने पिता के पीछे चलता था.
And I would try to put my foot in his footprint.
और मैं कोशिश करता था कि जो उनके पांव के निशान है उस पर मैं अपने पांव रखूं.
And when I was walking across the field,
जब मैं उस खेत में चलता था,
I looked like a drunken spider.
और मैं ऐसा लगता था जैसे मैं एक नशा किया हुआ व्यक्ति चल रहा हूँ.
I couldn't walk like my father.
मैं अपने पिता के समान नहीं चल सकता था.
I even looked foolish.
मैं यहाँ तक कि मूर्ख लगता था.
But if you were to observe me,
लेकिन अगर आप मुझे देखते उस समय,
you would realize that the desire of that little boy's heart was to be like his father.
तो आप उस समय देखते देख के कह सकते थे कि इस छोटे से बालक के अंदर जो अभिलाषा है वो अपने पिता के पीछे चलने की है.
It was obvious I wanted to follow him.
ये सच मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि मैं अपने पिता के पीछे चलूं.
Is that obvious in your life?
क्या ये आपके अंदर एक जिज्ञासा है?
Is it obvious that you want to follow Jesus?
क्या आपके अंदर जिज्ञासा है कि आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं?
That you want to be like him?
कि आप उसके समान बनना चाहते हैं?
You want to obey him?
आप उसको पालन करना चाहते हैं?
The unbeliever does not have Jesus as their hero.
अविश्वासी के लिए यीशु उनका हीरो के समान नहीं है.
He thinks of movie stars from Bollywood.
वो जो चरम से मूव क्या बॉलीवुड कह रहे हैं? हैं? बॉलीवुड वो जो फिल्म के हीरो हैं उनके 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 नायक.
He wants to be like a famous person.
वो उन्हीं के समान हम बनना चाहेंगे.
Or a rich person.
धनी व्यक्ति.
Or a great athlete, soccer player.
वो जो धावक हैं या फुटबॉल के खिलाड़ी हैं.
And they want to look like them.
और हम वो चाहेंगे कि उसके समान हम बने.
They want to act like them and dress like them.
उन्हीं के समान वो बनना चाहेंगे.
They want to talk like them.
उन्हीं के समान बात करना चाहेंगे.
But the Christian isn't that way.
लेकिन मसीह इस तरह से नहीं है.
He wants to follow Jesus.
वो यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं.
He wants to be like Jesus.
वो यीशु के समान बनना चाहते हैं.
Now here's something very important.
यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है.
And we have to keep it in a balance.
हमें दोनों को संतुलन में बनाए रखना है.
In many religions,
बहुत सारे धर्मों में,
the people find their salvation,
लोग जो है अपने उद्धार को,
by perfectly imitating their master,
अपने स्वामी के पूरी पूर्ण रीति सिद्धता के पीछे चलने के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं.
Christianity is not that way.
मसीहत इस प्रकार से नहीं है.
We find our salvation,
हम अपने उद्धार को जो प्राप्त करते हैं,
by believing in what our master did for us,
उस पर विश्वास करने के द्वारा जो हमारे स्वामी ने हमारे लिए किया है.
But having believed in what our master did,
जो कुछ भी हमारे स्वामी ने पूरा किया उस पर विश्वास करने के द्वारा,
we are called to dedicate our life to trying to be like our master.
कि हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम अपने आप को इस प्रकार समर्पित कर दें कि जो कुछ भी हमारे स्वामी ने किया है हम वही करें.
I think that Christianity in the West has missed this.
जो पाश्चात्य देश हैं उनके मसीहत ने इस चीज को खो दिया है.
In the West, we talk about believing Jesus.
हम पाश्चात्य देशों में हम मसीह पर विश्वास करने की बात करते हैं.
Having faith in Jesus.
यीशु पर विश्वास करने की बात करते हैं.
All that's perfect. We should talk about those things.
ये बिल्कुल सही है. हमें इन सारी चीज के बारे में बात करनी है.
We talk about having right doctrine.
हम सही सिद्धांतों की बात करते हैं.
Of knowing everything correctly.
सब कुछ को सही रीति जानने की बात करते हैं.
But we pay almost no attention to imitating Jesus.
लेकिन हम यीशु का अनुसरण करने पर ध्यान नहीं देते.
I think we would rather study Jesus.
हम इससे कि हम यीशु का अध्ययन करें.
And write really good books about Jesus.
यीशु के बारे में अच्छी पुस्तकें लिखें.
Than to follow him.
उससे बढ़कर हम उसका अनुसरण करें.
We want to be able to say very correct things about Jesus.
हम यीशु के बारे में बहुत सही बातें कह सकते हैं.
But we need to follow him.
लेकिन हम उसका उन्हें अनुसरण करना है.
Imitate him.
उसका पीछे चलना है.
We are followers of Jesus.
हम यीशु के अनुयायी हैं.
Do you see that?
आप देख रहे हैं इसको?
Now we need to have a balance here.
हमें इसमें संतुलन रखना है.
Those cultures that are from the east,
जो पूरा से जो संस्कृति आई है,
think more with regard to imitating the teaching, obeying.
अधिकतर उस बात पर कि हमें पालन करना है, अनुसरण करना है, पालन करना है.
And that's what we should be doing.
और इसी तरह से हमें उसे करना भी है.
As long as we've got the first part right.
जब तक हम पहले भाग को में सही है, हमें करना है.
We understand who Jesus is.
हमें इसको समझना है कि यीशु मसीह कौन है.
And we believe in him for salvation.
हमें हम उसके पर उद्धार के लिए विश्वास करते हैं.
Both things.
दोनों चीजें.
Now, let's go on to another test.
आइए हम दूसरे स्थल में जाएं.
Verse 9,
नवें पद में,
the one who says he is in the light and yet hates his brother is in the darkness until now.
जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति हूं और फिर भी अपने भाई से घृणा करता है, वो अब तक अंधकार में ही है.
The one who loves his brother abides in the light and there is no cause for stumbling in him.
जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है वो ज्योति में बना रहता है और उसमें कोई ठोकर का कारण नहीं.
Now the word brother,
ये जो शब्द भाई है,
is not referring to the poor.
ये उन गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए नहीं है.
It's not referring to someone from another culture.
वो उसके लिए नहीं है जो दूसरी संस्कृति से आ रहे हैं.
We need to love the poor.
हमें गरीबों से, निर्बलों से प्रेम करना है.
We need to love all men of all cultures.
हमारे जो संस्कृति में लोग हैं उनसे हमें प्रेम करना है.
But that's not what this word means.
लेकिन इसका वो अर्थ नहीं है.
It's referring to other Christians.
ये दूसरे मसीहों के ओर संकेत कर रहा है, इंगित कर रहा है.
One of the greatest evidences that you are converted.
ये एक सबसे बड़ा सबूत है कि आप परिवर्तित हो चुके हैं.
Is that you love the people of God.
कि आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं.
You love other Christians.
आप दूसरे मसीहों से प्रेम करते हैं.
And you are willing to serve them.
आप उनकी सेवा सहायता करने तैयार हैं.
And even die for them. And even die for
उनके लिए मरने के लिए आप तैयार हैं.
This is a very good word for the young people who are in our churches.
ये उन लोगों के लिए जो जवान हमारी कलीसिया में, इनके लिए बहुत अच्छा ये वचन है.
If they like to be with worldly people,
यदि वे संसारिक लोगों के समान होना चाहते हैं,
or with carnal Christians in the church,
और कलीसिया में उन साधारण या संसारिक लोगों के समान होना चाहते हैं,
rather than be with real Christians,
बजाय उसके कि वो एक सच्चे मसीहों के साथ रहें,
it may be because they are worldly and they are carnal.
इसका मतलब हो सकता है कि वे अभी तक स्वयं संसारिक और शारीरिक हैं.
We have a saying in the United States.
हम अपने अमेरिका में इस प्रकार से कथन कहा जाता है.
Birds that have the same feathers, they all stay together.
कि वो चिड़ियां जिनके एक जैसे पंख हैं, वे एक साथ इकट्ठा होते हैं.
Worldly people want to be with worldly people.
जो संसारिक लोग हैं, वो संसारिक लोगों के साथ रहना चाहते हैं.
Carnal people want to be with carnal people.
शारीरिक लोग शारीरिक लोग साथ रहना चाहते हैं.
Christians want to be with Christians.
मसीह लोग मसीहों के साथ रहना चाहते हैं.
Talking about Jesus.
मसीह के बारे में बात करते हैं.
Now, I want to show you something in the book of Matthew, chapter 25.
मत्ती उसके 25वें अध्याय में कुछ बात, कुछ चीज को मैं आपको दिखाना चाहूंगा.
Now we don't have to go time to go through the whole story.
हम पूरे इस कहानी में से तो होकर नहीं जा सकते, इतना समय नहीं है.
But in verse 31 we have the judgment of the nations.
लेकिन 31 पद में राष्ट्र का न्याय है.
The dividing of the sheep and the goats.
कि वो बकरी को और भेड़ को अलग करे.
Jesus looks at the sheep.
यीशु भेड़ों की ओर देखता है.
Looks at the Christians.
वो मसीहों को देखता है.
And he says this.
और वो ये कहता है.
I was hungry and you gave me something to eat. Verse 35.
मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया.
I was thirsty and you gave me something to drink.
मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया.
I was a stranger and you invited me in.
मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया.
Naked and you clothed me.
मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाए.
I was sick and you visited me.
मैं बीमार था तुम मेरी सुधि लेने आए.
I was in prison and you came to me.
मैं बंदीगृह में था तुमने मुझे तुम मिलने आए.
And he invites them into heaven.
और तब वो उनको स्वर्ग में आमंत्रित करता है.
To the goats, he says just the opposite.
लेकिन जो बकरियां हैं उनसे वो विरोध में बोलता है.
He says I was hungry and you didn't feed me.
कि मैं भूखा था तुमने मुझे नहीं खिलाया.
I was sick, you didn't visit me.
मैं बीमार था तुम मुझे देखने नहीं आए.
I was naked, you didn't clothe me.
मैं नंगा था तुमने वस्त्र नहीं पहनाए.
I was in prison and you didn't come to me.
मैं बंदीगृह में था तुम मुझे देखने नहीं आए.
Now many times this text is used wrongly.
कितनी बार ये जो स्थल है गलत रीति से उपयोग किया जाता है.
Men read this text and say we ought to have a prison ministry.
और पढ़ते हैं और हम कहते हैं हमको जो बंदीगृह की सेवा है उसको आरंभ करना है.
Or we ought to feed the hungry.
हमें भूखों को खिलाना है.
Or we ought to clothe the poor.
जो गरीब है उनको वस्त्र पहनाने हैं.
Well, we should do that.
ये भी हमें करना है.
But that's not what this passage is teaching.
लेकिन इस प्रकार से परमेश्वर का वचन नहीं सिखा रहे इस स्थल से.
Jesus is not saying I was a murderer in prison and you didn't visit me.
प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि मैं हत्यारा था और उस हत्यारा होने के कारण मैं बंदीगृह में चला गया तो मुझे देखने नहीं आए.
He's just saying I was in prison and you didn't visit me.
वो कहता है कि मैं जेल बंदीगृह में था तुम मुझे देखने नहीं आए.
And what he's saying is my people were in prison and you didn't visit them.
वो कह रहा मेरे लोग बंदीगृह में थे तुम उसे उन्हें देखने नहीं गए.
My people were hungry and you didn't feed them.
मेरे लोग भूखे थे तुमने उनको नहीं खिलाया.
What he's saying is this.
वो क्या कह रहा है.
The evidence that we are converted.
ये एक इस बात का सबूत है कि हम परिवर्तित लोग हैं.
Is that we will love other Christians and care for their needs.
कि हम दूसरे मसीहों से प्यार करेंगे और उनकी भी देखभाल करेंगे उनकी आवश्यकताओं की चिंता करेंगे.
The evidence that we are unconverted.
यदि हम अपरिवर्तित हैं.
Is that we do not love Christians.
हम इसका मतलब मसीह को प्यार नहीं करते.
And we do not care for their needs.
हम उनकी आवश्यकताओं की भी चिंता नहीं करते.
In South America, there are some really bad prisons.
जो South दक्षिण अमेरिका में जो कुछ बंद जेल खाने हैं वो बहुत ही खराब हैं.
And there was a time if you were thrown in prison, they didn't give you food in there.
और ऐसा समय है कि अगर आपको बंदीगृह में डाल जाएंगे तो उनको आपको भोजन नहीं दिया जाएगा.
They didn't give you clothes.
आपको कपड़े नहीं दिए जाएंगे.
They didn't give you medicine.
आपको दवाई नहीं दी जाएगी.
If someone didn't come and help you from the outside, you were in trouble.
यदि कोई बाहर से आकर आपकी सहायता ना करे आप बहुत ही अधिक समस्या में पड़ जाएंगे.
That's what this is talking about.
यहाँ पर इसी तरह की बात.
Now let's imagine that we're a group of Christians in Rome.
अब थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए हम मसीहों का एक झुंड है जो रोम में है.
And we have a little church. We meet together out in the forest.
और शायद एक छोटा सा झुंड है कलीसिया है वो जो जंगल में मिल रहा है.
And one night after the service,
एक रात्रि में आराधना के बाद,
we all make our ways back home through different paths.
हम दूसरे अलग-अलग रास्तों से अपने घर वापस जा रहे हैं.
And let's say that we go to bed.
और हम बिस्तर में चले जाते हैं.
Then there's a knock at the door.
लेकिन एक दरवाजे पे कोई खटखटाता है.
About 4 in the morning.
4 बजे सुबह.
We open the door.
हम दरवाजा खोलते हैं.
It's one of the deacons.
हम देखते हैं कि एक सेवक का जो कलीसिया में कार्य करने वाला.
And he says, "Get up."
कहता है उठो उठो.
Two of the believers when they were leaving were caught by the Roman soldiers.
जो दो विश्वासी हैं जो चर्च में से वापस जा रहे थे उनको रोमियों से सिपाहियों ने पकड़ लिया है.
They were stripped of their clothing and beaten.
और उनको उनके कपड़े उतार दिए गए हैं उनको मारा गया है.
They are thrown in prison.
उनको बंदीगृह में डाल दिया गया है.
We need to call our church together.
हमें अपनी कलीसिया को साथ मिलकर बुलाना है.
So the church gathers together.
और कलीसिया साथ इकट्ठा होती है.
And the leader of the church says this.
और तब जो कलीसिया का पासवान है अगुआ वो कहता है.
If we do not help our brothers, they will die.
यदि हम अपने भाइयों की मदद ना करेंगे मर जाएंगे.
And so a young believer jumps up.
और एक जवान खड़ा होता है.
And he says, "I'll go."
वो कहता है मैं जाऊंगा.
And the pastor says this.
फिर पासवान ये कहता है.
Son, you don't know what you're saying.
कि बेटा तुम्हें नहीं मालूम तुमको क्या कह रहे हो.
Before you make your decision, you need to listen to me.
इससे पहले कि तुम अपना निर्णय बताओ तुमको समझना है.
If you go there,
यदि तुम वहां जाओगे,
taking food and clothing and medicine,
ये सारे भोजन वस्तुओं को लेकर तुम वहां जाओगे,
the Romans will probably catch you too.
रोमियों के सिपाही जो है सैनिक तुम्हें भी पकड़ लेंगे.
So if you go,
यदि तुम जाओ,
you may be imprisoned with them.
तुम उनके साथ बंदीगृह में हो जाओगे.
Now, a few of the people in the church hear that.
अब कुछ लोग हैं जो कलीसिया में हैं वो सुनते हैं.
And they say, this is crazy.
Oh, ये तो बिल्कुल बहुत उत्तेजित है.
We're going home.
हम तो ये बेकार की बात है, हम घर जा रहे हैं.
We're not going to risk our life.
हम अपने जीवन को किसी प्रकार से रिस्क में नहीं डालना चाहते.
We don't even know those men very well.
हम उस व्यक्ति को ज्यादा जानते भी नहीं है.
And they leave.
और छोड़ देते हैं.
What are they demonstrating?
यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है?
They're demonstrating they're not Christian.
कि वो मसीह नहीं है.
But the boy stands up again.
लेकिन वो लड़का फिर से खड़ा होता है.
And he says, Pastor, I'll go.
Pastor, पासवान मैं जाऊंगा.
And then another brother stands up and says, I'll go with him.
और जब एक और भाई खड़ा होता है वो कहता मैं भी जाऊंगा.
And another brother says, I'll go.
और दूसरा भाई कहता मैं भी जाऊंगा.
And then the pastor says, and I'll go too.
और पासवान कहता मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा.
What are they showing?
वो क्या दिखा रहे हैं?
That they are Christian.
वो मसीह हैं.
That's what that passage is talking about.
ये जो है स्थल बता रहा है.
Now, of course, all of us can become afraid and not do what's right.
और कई बार हम में से बहुत सारे लोग भयभीत हो सकते हैं कि जो सही है उसको ना करें.
And that doesn't mean we're lost.
इसका मतलब ये नहीं कि हम खो चुके हैं, हम हार चुके हैं.
But if we live continuously in that kind of lovelessness and self-centeredness,
लेकिन अगर हम निरंतर इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते रहते हैं आलस में या अपने स्वार्थ के जीवन में,
it is evidence that we're not Christian.
इसका ये प्रमाण है, सबूत है कि हम मसीह नहीं है.
They will know we are Christians by the love that we have for one another.
वे इससे जानेंगे कि हम मसीह हैं कि हम एक दूसरे के प्रेम से.
Let's do one other test.
हम दूसरे भी एक स्थल में देखें.
Chapter 2, verse 15.
दूसरा अध्याय उसका यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 15 पद. फर्स्ट जॉन पहला योना दूसरा अध्याय और उसका 15 पद.
डू नॉट लव द वर्ल्ड नॉर द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड.
कि संसार से प्रेम ना करो और ना उनकी वस्तुओं से.
इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड द लव ऑफ द फादर इज नॉट इन हिम.
यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है.
एनीवन हु लव्स द वर्ल्ड इज नॉट अ क्रिश्चियन.
जो कोई संसार से प्रेम करता है वो मसीह नहीं है.
नाउ व्हाट डज दैट मीन.
इसका मतलब क्या है?
Remember what we talked about this morning?
आपको याद है सुबह हमने क्या बात करी थी?
When God saves us, He begins to sanctify us.
कि जब परमेश्वर हमें बचाता है तो हमें वो पवित्र बनाने लगता है.
He begins to pull us out of the world.
वो हमें संसार से खींच लेता है.
And He begins to pull the world out of us.
और वो संसार को हमसे अलग निकाल देता है.
All of us must struggle with the desires of the world.
हम में से प्रत्येक जो है संसार की लालसाओं से संघर्ष करता है.
And there are times we will lose that struggle.
और समय है कि समय में हम अपने इस संघर्ष को खो देते हैं.
But the true Christian will struggle against the desires of the flesh.
लेकिन जो सच्चा मसीह है वो शरीर की अभिलाषाओं या लालसाओं के प्रति संघर्ष करता है.
And he will make progress.
और वो आगे प्रगति करता है.
And if he goes into the world a little bit,
यदि वो संसार में किसी रीति चला भी जाता है,
God will discipline him and bring him out again.
परमेश्वर उसको अनुशासित करेगा और उसको पुनः वो बाहर निकाल लाएगा.
Now brothers, this is important for you.
मेरे भाइयों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए.
India is growing economically.
जो भारत है आर्थिक स्थिति से बढ़ रहा है.
It's becoming a powerful nation.
ये एक सामर्थी राष्ट्र बन रहा है.
Who knows? One day it may be much stronger than the United States.
हो सकता है एक दिन अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाए.
Maybe you think that's good.
हो सकता है आप ये सोचते हैं कि सही है, अच्छा है.
But brothers, it will bring temptations on you.
लेकिन ये आपके ऊपर एक परीक्षा ला सकता है.
Prosperity rarely helps the church.
जो संपन्नता है वो कलीसिया की सहायता नहीं करती है.
When I was in Peru,
जब मैं पूर्व में था
during the war,
उस युद्ध के समय में
it was very dangerous,
वो बहुत भयानक था
and people were very poor,
और लोग वहां पर बहुत गरीब और निर्धन थे.
We would stand in line for an hour or two just to get a bag of rice.
हमें एक घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ता था उस भोजन को लेने के लिए.
But the Christians met together almost every night.
लेकिन मसीह लोग साथ मिलकर इकट्ठा होते थे प्रति रात्रि में.
There were prayer meetings and singing.
और वहां पर प्रार्थना थी और गीत गाते थे.
And evangelism.
और सुसमाचार प्रचार होता था.
People living for eternity.
लोग वहां पर अनंत पे जो रह रहे थे अनंत के लिए.
Because you had nothing else.
उनके क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं था.
And you didn't know if you were going to be alive the next day.
और आपको ये भी नहीं मालूम कि दूसरे दिन आप जिंदा बचेंगे.
But when the war came to an end,
लेकिन जब वो युद्ध खत्म होने पड़ा लगा समाप्ति में,
and Peru began to prosper,
और जो पूर्व जो है संपन्न होने लगा,
the churches in Peru became a lot like the churches in the United States.
और पूर्व में भी बहुत सारी कलीसिया यूनाइटेड स्टेट के कलीसियाओं के समान होने लगी.
The world will grab you.
वो संसार आपको पकड़ लेगा.
Do not live for the world.
आप संसार के लिए मत जिए.
You say, well, I don't have much money. I don't have to worry about this.
Oh, मेरे पास बहुत सारा धन नहीं है इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है.
There are poor people who have as much trouble with this as rich people.
कई बार वो जो गरीब लोग हैं उनके सामने ज्यादा संघर्ष रहता है धनवानों की अपेक्षा.
Because although they don't have it, they're constantly wanting it.
क्योंकि जो उनके पास नहीं है वो निरंतर उसकी वो चाहना रखते हैं.
Always take a lot of care. Be careful.
और बहुत ही अधिक आपको सावधान होना है, सावधानी बरतनी है.
The world will grab you gradually.
आपको संसार जो है धीरे 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 जकड़ लेगा.
Do not make friends with the world.
संसार के साथ मित्रता मत कीजिए.
Remember that even money is the root of all evil.
यहाँ तक कि धन जो है वो सब बुराइयों की जड़ है.
I have seen believers and even pastors.
मैंने विश्वासियों को यहाँ तक पासवान को देखा है.
They start prospering.
वो धीरे धीरे संपन्न होने लगते हैं.
And it changes their heart toward God.
उनका हृदय परमेश्वर के प्रति बदल जाता है.
Brothers, be very, very careful.
हमें बहुत अधिक सावधान होना है.
And we need to warn the people in our congregation.
हमें अपनी मंडली में लोगों को चेताना है.
If they love the world,
यदि वो संसार से प्रेम करते हैं,
they do not love God.
वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते.
They must fight against the world.
वो उनको संसार के प्रति लड़ना है.
These are some of the tests.
ये कुछ परख हैं.
And I want you to maybe take some time to go through the whole book of 1 John.
मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय लेकर पूरे यूहन्ना की इस पुस्तक में से होके जाएं.
But remember the greatest test of all.
और वो जो मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा जो परख है वो ये है.
The true Christian.
एक सच्चा मसीह.
Is trusting in Jesus Christ alone.
कि वो सच्चा मसीह जो है वो यीशु मसीह ही पर भरोसा रखता है.
He glories in Christ Jesus.
वो मसीह की महिमा में रहता है.
And puts no confidence in the flesh.
किसी भी प्रकार से अपना भरोसा शरीर पर नहीं लगाता.
Let's pray.
आई एम प्रार्थना.